الله من شر الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعناهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. صلوات الله. کل جو آیتوں کا ذکر کیا گیا تھا اور جو مطالب رہ گئے تھے، آج انہی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. کل جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ بہت ہی قیمتی آیتیں ہیں، اور بالخصوص آج کے ہمارے دور میں اور ہر دور میں یہ مسئلہ بہت ہی اہم رہا ہے، اور تمام ملتیں اس سے دوچار ہوئی ہیں، تمام قومیں اس سے دوچار ہوئی ہیں، اور آج بھی یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. ابتدائے آفرینش سے لے کر اب تک ہر ملت اور ہر قوم کے لیے توحید کا مسئلہ نہایت ہی حساس رہا ہے. توحید سے متعلق جتنی بحثیں ہوئی ہیں، جتنے مسائل اور جتنے مشکلات پیش آئی ہیں، ان سب کا تعلق چاہے انسانی زندگی سے ہوں یا آخرت کے مسائل، ان سب کا دار و مدار توحید پر ہے. اور جب تک توحید درست نہیں ہوگی، اس وقت تک دین کی درستگی کا سوال نہیں پیدا ہوتا. استحکام دین توحید کی وجہ سے، اور مسلمانوں کو جو امتیاز حاصل ہے، اسلام کو جو امتیاز حاصل ہے دیگر ادیان پر، وہ بھی شفافیت توحید کی وجہ سے ہیں. اور پھر اگر آپ فرق اسلامی میں اگر آپ آئیں گے، تو کسی بھی فرقے کا تفوق اور کسی بھی فرقے کا امتیاز دوسرے فرقے سے توحید کی شفافیت ہی کی بنیاد پر ہوگا. کوئی بھی فرقہ اگر دیگر فرقے اسلامی سے افضلیت رکھتا ہے یا امتیاز رکھتا ہے، تو وہ بھی مسئلہ توحید کی وجہ سے، کہ جس کے پاس، جس دین میں، جس مسلک میں توحید صاف اور شفاف رہے گی، جو دین خدا نہیں دے سکتا، وہ دین کچھ بھی نہیں دے سکتا. وہ دین خالی ہے جس دین کے پاس خدا نہیں ہے. انسان کو دین سے جو چیز ملتی ہے، سب سے اہم ترین چیز جو دین دیتا ہے اور دین دے سکتا ہے، وہ توحید ہے. توحید سے بڑی کوئی چیز دامن اسلام اور دامن دین میں نہیں ہے جو انسانوں اور بشریت کو دے سکے. سارے ادیان کا دار و مدار ہی توحید اور مات کے عقیدے پر ہے. اگر یہ دو عقیدے شفافیت کے ساتھ کسی مذہب اور کسی مسلک میں نہ مل سکے، تو وہ نہ دین مکمل ہے نہ وہ مسلک شفاف ہے. یہاں انہی مسائل کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. کل بھی میں نے ان آیت کی تلاوت کی تھی کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جس دن بھی خدا ان کو اور ان کے خداؤں کو، جنہیں یہ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ایک جگہ جمع کر دے گا، ہے نا، اور پھر پوچھے گا، فیقول، اور پھر پوچھے گا، أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم لوگوں نے میرے بندوں کو بھٹکایا تھا، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ لوگ راستے سے از خود بھٹک گئے تھے. یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ پروردگار عالم مشرکین کے ساتھ ساتھ ان بتوں کو بھی محشور کرے گا جن کی یہ پرستش کیا کرتے تھے، تاکہ حجت تمام ہو سکے. ان بتوں کو، چاہے وہ پتھروں کی شکل میں ہو، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ جس شکل میں ہو، اور پھر ان کی زبان سے یہ اعتراف ہوگا کہ ہم نے انہیں نہیں بھٹکایا تھا، हमने तो सिर्फ गोया इन्हें मशवरा दिया था या इन्हें जो है बहकाया था, लेकिन भटके तो ये खुद हैं। तो उस वक्त वो लोग जो हैं अपने किए क्या पशेमान होंगे। तो यहां पर दोनों को मशहूर किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो चीज इंसान को राह हक से मुनहरिफ कर देती है और गुमराह कर देती है, वो कौन सी चीजें हैं जो अल्लाह के जिक्र से इंसानों को रोक देती है और गुमराह कर देती है, किस वजह से इंसान जो है वो गुमराह होता है, अवामिल गुमराही क्या है। कुरान मजीद ने जो गुमराही के असबाब बयान किए हैं, एक तो ये है कि बुरा दोस्त, जो बुरा दोस्त होता है वो इंसान को गुमराह कर सकता है। लकद अज़ल्लनी अन ज़िक्र, कि मेरे इस दोस्त ने मुझे जो है जिक्र खुदा से गुमराह कर दिया, या दूसरे ये कि हवाओ हवस इंसान को गुमराह कर देती है। अज़बाब गुमराही में से हवाओ हवस है, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी है, हवाए नफ्स की पैरवी है कि हवाए नफ्स इंसान को राह हक से मुनहरिफ कर देता है। वला तत्तबिल हवा फयदुल्लुका अनिस्सबील, फयदुल्लुका अनिस्सबील, के जो हवाओ हवस की पैरवी मत करो, इसलिए कि हवाओ हवस की पैरवी इंसान को रास्ते से मुनहरिफ कर देती है। या फिर वो दानिश्वर, वो उलमा, वो मुफक्किरीन के जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से हैं, है ना, यक्तुबून अल किताब बे आईदीहिम, जो लिखते हैं अपने हाथ से, सुम्मा यकूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह, और उसके बाद कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से, यानी झूठ बात अल्लाह सुबहान व तआला से मनसूब कर देते हैं, जो गुमराही का सबब बनती है जो बात। या फिर गुमराह हाकिम जैसे फिरौन, जैसे शद्दाद, जैसे हामान, इन हाकिमों की पैरवी इंसान को राह हक से मुनहरिफ कर देती है। वह अज़ल्ल फिरौन क़ौमहु, कि फिरौन ने उनकी कौम को गुमराह कर दिया। या फिर शैतान गुमराही के असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब है, कि इन्नहु अदुवन मुज़िल्लुन मुबीन, कि ये जो है दुश्मन है खुला हुआ जो गुमराह कर देता है, यानी गुमराह करने वाला खुला दुश्मन है। या फिर ये कि अक्सरियत की पैरवी इंसान को गुमराह कर देती है, यानी इंसान कैसे गुमराह होता है, रास्ते से कैसे भटकता है, अल्लाह को छोड़कर गैर खुदा की परस्तिश इंसान को गुमराह बना देती है। और फिर गैर खुदा की परस्तिश इंसान क्यों करने लगता है, अक्सरियत को देखकर। तो अक्सरियत गुमराही का सबब बन सकती है। अक्सरियत की अगर आप पैरवी करेंगे, वह इन तुते अक्सर अक्सर मनफिल अर्ज यदुल्लुका अनिस्सबील, वह इन तुते अक्सर मनफिल अर्द, अगर अक्सरियत की जो जमीन पर है अगर तुम उसकी इत्तबा करोगे तो वह तुम्हें रास्ते से हटा देंगे। या फिर गुमराह वालदैन के इन्ना वजद ना आबा आना, कि हमने अपने आबा अजदाद को इसी रास्ते पर देखा, वह इन्ना आला आफार है मुक्तदून, कि हम उनके रास्ते पर चल पड़े और उनकी जो है इक्तदा करने लगे। क्योंकि अक्सर लोगों का दीन उनके माँ बाप का दीन होता है। हम क्यों मिसाल के तौर पर शिया हैं, इसलिए कि हमारे माँ बाप शिया हैं। हम क्यों सुन्नी हैं, इसलिए कि हमारे माँ बाप सुन्नी हैं। क्या कोई इंसान ऐसा है कि अपने माँ बाप के दीन से हट गया हो, या जिस दीन के ऊपर आप हैं उसको सोच समझ कर हैं, या क्योंकि आबाओ अजदाद इस दीन पर थे आप भी इस दीन पर हैं। अगर आप अपने आबाओ अजदाद के दीन पर हैं और खुद से आपने फैसला नहीं किया है, तो गोया आप हक पर भी अगर हैं तब भी आपका दीन काबिल कबूल नहीं है, इसलिए कि तौहीद में तकलीद नहीं है, है ना, अकायद में तकलीद नहीं है। अल्लाह एक है, क्यों, इसलिए कि माँ कहती है बाप कहता है, ये जो है काबिल कबूल नहीं है। यानी तौहीद में तकलीद हराम है, उसूल दीन में तकलीद हराम है, और फुरू दीन में तकलीद वाजिब है। अब वो हदीसें जो जो ये कहती है कि उसूल दीन में तकलीद हराम है, उन हदीसों का सहारा लेकर कुछ लोग जो है गुमराह कर देते हैं, कहते हैं कि तकलीद से मना किया गया है। अरे भाई, तकलीद से उसूल दीन में मना किया गया है, फुरूए दीन में नहीं मना किया गया। तो फुरूए दीन से गुमराह किया जाता है, कहा जाता है कि फुरूए दीन में भी तकलीद हराम है, जबकि फुरूए दीन में तकलीद वाजिब है। वालिद मुसलम, उसूल दीन में तकलीद हराम है और फुरूए दीन में तकलीद वाजिब है। तो आबाओ अजदाद की पैरवी उसूल अकायद में करना हराम है, उसूल दीन में तकलीद नहीं हो सकती है। तो माँ बाप की यानी गुमराह माँ बाप की इताद भी इंसान को गुमराह कर देती है। तो ये गुमराही के असबाब में से एक असबाब है। ये आयत इस तरफ इशारा कर रही है कि इंसानों के साथ साथ यौम यहशुरुहुम वमा याबुदून मिन दूनिल्लाह, जिस दिन जो है अल्लाह सुबहानहु ताला इन्हें महशूर करेगा, यानी किसको, इंसानों को, यहशुरुहुम इंसानों को महशूर करेगा। वमा याबुदून मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिन माबूदों की इबादत करते थे उन दोनों को, यानी बुतों को और बुतपरस्तों को, दोनों को अल्लाह सुबहानहु ताला महशूर करेगा। और फिर इनसे पूछेगा, इन खुदाओं से पूछेगा, इन झूठे खुदाओं से, कि आखिर किसने इन्हें गुमराह, तुमने गुमराह किया था या ये खुद गुमराह हुए हैं। तो मुशरिकों और बुतपरस्तों से बासपुरस होगी कयामत के दिन। मुशरिकों से भी सवाल किया जाएगा और बुतों से भी सवाल किया जाएगा। यहां ये बात कही जाती है कि अल्लाह सुबहानहु ताला की परस्तिश और उसकी इबादत इंसान की फितरत में दाखिल है, और गैर खुदा की परस्तिश फितरत से इनहराफ है, यानी गुमराही है। सीधे रास्ते पे इंसान पैदा हुआ फितरत इस्लाम पर, और फितरत इस्लाम जो है वो खुदा परस्ती का रास्ता है। खुदा परस्ती इंसान की फितरत में है, उसकी तबीयत में है, और गैर खुदा की तरफ तवज्जो इंसान की फितरत के खिलाफ है। इसलिए गैर खुदा की तरफ सही फितरत का इंसान, जिसकी फितरत सालिम है, उसके लिए खुदा की परस्तिश आसान है, गैर खुदा की परस्तिश मुश्किल है। लेकिन जिसकी तबीयत ही बिगड़ गई हो, जिसका मिजाज ही खराब हो गया हो, जैसे कोई अरकान का मरीज है तो उसे मीठी चीज भी कड़वी मालूम होगी, लेकिन जिसका मिजाज सालिम है उसको मीठी चीज मीठी नजर आएगी, कड़वी चीज कड़वी नजर आएगी, और जो सही सालिम इंसान है उसको कड़वी चीज हजम ही नहीं होगी। अगर किसी को कड़वी शय हजम हो रही है तो इसका मतलब यह है कि उसकी फितरत सालिम नहीं रही है। तो कड़वा निगलना मुश्किल है या मीठा निगलना मुश्किल है इंसान के लिए। फितरत पे चलना आसान है, गैर फितरत पे चलना मुश्किल है। फितरत पे चलना इंसान की तबीयत और उसकी फितरत का तकाजा है। हवा और हवस की पैरवी इंसान की फितरत के खिलाफ है। यहां पर परवरदिगार आलम यह कह रहा है कि ये वो कौम है कि जो गुमराह हुई है, और जब इनसे ये सवाल किया जाएगा तो ये लोग कहेंगे कालू सुबहानका, यानी ये बुत कहेंगे कालू। जब इनसे ये सवाल किया जाएगा कि तुम लोगों ने भटकाया, ये अस्खुद भटक गए, तो ये कहेंगे कालू सुबहानका मा काना यंबगिलना अन नत्तखिदा मिन दूनिका मिन औलिया, ये हमारे बस की बात नहीं थी कि हम जो है तुझे छोड़कर किसी और को अपना सरपरस बना लें। ये हमारे लिए बात मुश्किल थी। सुबहानका यानी पाक व पाकिजा है तेरी जात, मुनज्जा है तेरी जात। ये उस वक्त कहा जाता है जब इंसान हैरान हो जाए और ताज्जुब खैज मरहले में कहा जाता है कि सुबहानका पाक है तेरी जात, मा काना यंबगिलना, ये हमारे लिए सजावार नहीं था कि अन्नत्तखिज़ा मिन दूनिका मिन औलिया, तुझे छोड़कर हम किसी और को अपना सरपरस बना लें, ये बात हमारे लिए मुमकिन न थी। यानी बुत ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी और को सरपरस बनाना ये हमारे लिए सजावार नहीं है, लेकिन इंसान खुदा को छोड़कर गैर खुदा की विलायत में आ जाता है। यानी इंसान अल्लाह के अलावा किसी और की सरपरस्ती को मानता है, जबकि भूत ये कह रहे हैं कि हम तुझे छोड़कर किसी और को अपना सरपरस्त नहीं मान सकते, लेकिन इंसान खुदा को छोड़कर गैरुल्लाह की जो है वो परस्तिश कर रहा है और उसकी इबादत कर रहा है और उसको अपना सरपरस्त बनाया हुआ है। तो ये सरपरस्ती जो है इंसान के लायक, जब बुतों के लायक शान नहीं है तो इंसानों के लायक शान और उसके लिए कैसे सजावार हो सकता है कि इंसान अल्लाह सुभान व तआला को छोड़कर किसी और की परस्तिश करे और किसी और की इबादत करे। ये जो वजह है, लेकिन आखिर वजह गुमराही क्या है? तो इन्होंने ये कहा कि हमने तो नहीं भटकाया, ये तो हमारे बस की बात नहीं थी। लेकिन मत्तअतहुम व आबाहुम हत्ता नसु ज़िक्रा, तो इन्होंने एक वजह बयान की। वो वजह ये बयान की कि असल बात यह है कि तूने इन्हें और उनके बुजुर्गों को जो इज्जत अता की थी ना, जो दौलत अता की थी, जो पैसा दिया था, जो सरवत दिया था, तो ये तेरी याद से गाफिल हो गए, इसलिए ये हलाक होने वाले लोग, क्योंकि ये हलाक होने वाले लोग ही थे। ये आयत देखिए आप, वकानु कौमन बुरा, कि ये लोग जो है तबाहशुदा ही लोग थे। बुरा कहते हैं हलाकत और फसाद को, बायर कहते हैं बंजर जमीन को, बायर यानी खाली जगह जहां पर दरख्त ना उगते हो, वो बायर से बुरा यानी कौमन बुरा यानी जो है वो कौम जो हलाकत खैज हो, कि जिसके मुकद्दर में हलाकत और फसाद हो, नाबूदी हो। यहां पर जो वजह बयान की गई है वो वजह ये है कि इन लोगों ने जो गुमराही का सबब बना वो तेरे जिक्र से गाफिल हो गए थे। नसुस जिक्र के भुला दिया था, निस्यान फरामोशी। तो ये जो निस्यान और फरामोशी है, ये निस्यान और फरामोशी इब्तदाई मरहले में तो काबिल सरजनिश नहीं है, यानी भूल हो गई, जिक्र खुदा से गाफिल हो गए, भूल गए। तो ये अगर जो है खुद ब खुद नहीं है बल्कि नाखास्ता तौर के ऊपर अगर भूल हुई है, यानी जान बूझ कर नहीं हुई है, बगैर जाने बूझे अगर निस्यान तारी हो गया है, गलती हो गई है, तो ये काबिल अफ़ है, काबिल बख्शिश है और काबिल मग़फ़िरत है कि अल्लाह सुबहान व तआला माफ़ कर देगा उन लोगों को कि जो बगैर जान बूझ के जो है वो खता उनसे सरजनिश हो गई हो और वो भूल गए हों अल्लाह के जिक्र को, फरामोश कर दिया हो। क्योंकि बुत ये कह रहे हैं, वो जो झूठे खुदा हैं वो ये कह रहे हैं कि ये लोग जो गुमराह हुए हैं ना परवरदिगार, ये जो तूने इनको और उनके बुजुर्गों को जो इज्जत अता की थी, जो इख्तदार अता किया था, जो गैर जरूरी तौर के ऊपर ये जो लोग पैसे वाले हो गए थे, ये पैसा, ये सरवत, ये दौलत इनकी गुमराही का सबब बना है कि जिसकी वजह से ये लोग जो है वो तेरी ही दी हुई नेमत का गोया जो है कुफरान नेमत किया करते थे और उसका गलत इस्तेमाल किया, कि वो दौलत जो इंसान के जिक्र को में इजाफा करना चाहिए था और इंसान के शुक्र में इजाफा करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने दौलत की कसरत से जो अल्लाह की नेमत थी उसका गलत इस्तेमाल किया और अल्लाह के जिक्र से महरूम हो गए। अब जो अल्लाह के जिक्र को फरामोश कर दिया, ये अगर नाखास्ता तौर के ऊपर हुआ है तो काबिल दरगुजश्त है, लेकिन अगर ये इसियान, ये निसियान और ये फरामोशी अगर तुलानी हो जाए और ये जो है ख्वाहिशात नफ्स की बुनियाद पर हो, जानबूझकर अगर ये जो है निसियान हुआ है, अल्लाह को जानबूझकर भुलाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने खुद गुमराही का सामान फराहम किया है, खुद ये लोग। अब ऐसे लोग जो हैं जो खुद से गुमराह हुए हैं वो कहर इलाही का मौजिब बनेगा और जो है अल्लाह के अजाब इनको घेर लेगा। क्यों? इसलिए कि इन्होंने अज खुद अल्लाह को भुला दिया था। निसियान की जो है वो वजूहात हो सकती हैं और वो वजूहात यानी अल्लाह के जिक्र को फरामोश कर देने की वजूहात हैं। एक जो वजह बयान की गई है वो है मालो सरवत की ज्यादती, यानी दौलत की ज्यादती, पैसे की ज्यादती इंसान को अल्लाह के जिक्र से रोकने का सबब बन सकती है। یہ نہیں کہ ہر دولت مند انسان اللہ کے ذکر سے جو ہے غافل ہو جاتا ہے، یہ بات بھی نہیں ہے. ایک سچا تاجر، ایک سچا جو ہے وہ اللہ کا بندہ، دولت مند ہونے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ ذکر خدا سے جو ہے غافل نہ رہے. لیکن اکثر یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ مال و دولت بھی انسان کو گمراہ کر سکتی ہیں اگر انسان متوجہ نہ رہے. یعنی مال و دولت کی کثرت انسان کو گمراہ کر سکتی ہے. لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تو اللہ سبحانہ کہہ رہا کہ آگاہ ہو جاؤ، اب متوجہ ہو جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اموال، تمہاری اولاد تمہیں ذکر الہی سے روک دے. یعنی اولاد بھی سبب بن سکتی ہے، اولاد کی محبت سبب بن سکتی ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ غافل ہو جائے. مال کی کثرت بن سکتی ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تیسرا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تجارت بھی ممکن ہے، کیونکہ انسان اس قدر بیع و شراء میں، کاروبار میں، دکاندار بازار میں اس قدر گھر گیا ہے کہ اب وہ ذکر خدا سے غافل ہو گیا ہے. مشغولیت بھی کبھی اللہ کے ذکر سے انسان کو غافل کر سکتی ہے. یہ بھی نسیان اور اسباب فراموشی میں سے ایک سبب. اللہ کے بندگان خاص اور مردان خدا وہ ہیں کہ جن کو نہ تجارت غافل کر سکتی ہے اور نہ بیع اور شراء اور بازارداری اور دکانداری انسان کو اللہ کے ذکر سے روکتی ہے. جو اللہ کے نیک ان کو تجارت غافل نہیں کرتی ہے، لیکن یہ تجارت عام انسانوں کو گمراہ کر سکتی ہے. یہ بھی اسباب میں سے ہے گمراہی کے. اور پھر شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء میسر ویصدکم عن ذکر اللہ فہل انتم منتہون. یہ قرآن مجید متوجہ کر رہا ہے کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ تمہارے درمیان میں شراب اور جوئے کے سے عداوت ڈالے اور جو ہے بغض پیدا کرے. شیطان سے منحرف کرے اور راہ حق سے تمہیں ہٹائے. اگر شیطان کہہ رہا ہے کہ ان بندگان خاص اور مخلص کو جو تیرے جتنے ضرورت نہیں ہے، تو خاص بندگان خدا وہ ہوتے ہیں جن کو نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ بیع و شراء غافل کر سکتی ہے. لیکن عام انسان کے لیے اولاد دولت یہ اور یہ سب جو ہے خدا سے روک سکتے ہیں، روکنے کے اور غفلت کے اسباب میں سے یہ اسباب ہیں اگر انسان متوجہ نہ رہے. جس طرح سے گمراہ کرنے والے اسباب میں برے حاکموں کی پیروی اور جو ہے برے دوست کی پیروی، یہ انسان کو گمراہ کر سکتی ہے. یہاں یہ ظلم نہیں کیا نے جو ہے ان کے اوپر جو ہے یہ پروردگار عالم یہاں ان کی زبان سے، بتوں کی زبان سے کہہ رہا ہے کہ پروردگار قالو سبحانکا ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک اولیاء ولکن، یہ لکھ ہم کو تجھے چھوڑ کر کسی کو سرپرست نہیں بنا سکتے، हमारे लिए तो यह सजावार नहीं है। तो गोया ये लोग, ये तेरे बंदे जो तुझे छोड़कर हमारी पैरवी किया करते थे, कसूर इनका है, हमारा नहीं है। तो ये दामन को झाड़ लें, यानी उस दिन लोग दामन को झाड़ेंगे। खुद शैतान का इंटरव्यू भी कुरान मजीद में मौजूद है कि जिसमें शैतान से जब पूछा जाएगा कि तूने इनको गुमराह किया, तो वो कहेगा कि मैंने हाथ पकड़कर तो इन्हें जो है मैकदों तक नहीं ले गया था, इनको बुराई के मकामात मजबूर नहीं किया था, बुराई करने और गुनाह करने पर और राह मुनहरिफ करने पर मैंने इन्हें मजबूर नहीं किया था, बल्कि ये अज खुद इन्होंने ये किया है, मैंने इनको मजबूर नहीं किया। आखिरी आयत ज़िम्न में है, यानी ये मतलब तमाम हो जाएगा, अलबत्ता सूरा तो तवील है, ये आयतें भी बाकी रहेंगी, लेकिन एक आयत जो यहां पर जो इसी को लिए हुए है, इसमें इरशाद हो रहा है, फकत कज़बूकुम बिमा तकूलून फमा तस्ततियूना सरफम वला नसरम वमन युज़लिम मिनकुम नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा। देखा तुम लोगों ने कि तुम्हें वो भी झुटला रहे हैं जिन्हें तुमने खुदा बनाया था, अब न तुम अज़ाब बचा सकते हो और न अपनी मदद कर सकते हो, और जो भी तुमसे जुल्म करेगा उसे बहुत बड़े सख्त अजाब का मजा। देखा तुम लोगों ने कि तुम्हें वो भी झुटला रहे हैं जिन्हें खुदा बनाया था, पाक है तेरी जात, हमारे लिए सजावार नहीं था कि हम तुझे छोड़कर किसी और को सरपरस बना ले, यानी हम में तो ये जुरत नहीं थी, ये इन लोगों ने जुरत की जो हमको खुदा बना लिया, हम में तो इतनी जुरत नहीं थी कि हम किसी को तुझे छोड़, यानी हमने किसी की परस्तिश थोड़ी की थी, ये लोग हमारी परस्तिश कर रहे थे और हमने इन्हें गुमराह नहीं किया था, ये खुद गुमराह हुए थे। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें कि जनाब ईसा को जिन लोगों ने खुदा माना, या ये नाम निहाद नुसैरी जो अपने को कहते हैं, तो इसमें हजरत अली का क्या कसूर है कि जिनको लोगों ने खुदा मान लिया है ना। उनका तो कोई कसूर नहीं है, या ये पत्थर उसका क्या कसूर है जिसको जो है ना बुत बना के तराश के बैठा लिया है, और जो है अल्लाह के अलावा जो है जो लोग बुतों की परस्तिश करते हैं बुतों का क्या कसूर है। तो कहेंगे हमने तो किसी की परस्तिश नहीं की थी तुझे छोड़ के, इन लोगों ने जो है हमारी परस्तिश की थी, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तो अब अल्लाह सुबहानहू ताला इनकी तरफ मुतवज्जे होकर ये कहेगा, फकत कज़बूकुम बिमा तकूलून फमा तस्ततियूना सरफम वला नसरा। अब कहेगा कि तुमने जो दावा किया था कि तुम तो वो ला रहे हैं जिन्हें तुमने खुदा बनाया था, तो अब न तुम अजाब को टाल सकते हो और न अपनी मदद कर सकते हो, और जो भी तुमसे जुल्म करेगा जो भी तुम में से जुल्म करेगा उसके लिए सख्त अजाब दिया जाएगा। यानी शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। वो इन शिर्क जुल्म अजीम, कि शिर्क जो है सबसे बड़ा जुल्म है, और हर चीज माफ हो सकती है लेकिन शिर्क माफ नहीं हो सकता। ये ऐसा गुना है कि जो नाकाबिले माफी है, शिर्क नाकाबिले माफी जुर्म है। क्या तुम्हारा कोई मददगार नहीं हो सकता है, तुम जिस खुदाओं पे तकिया करते थे वो भी अब तुम्हारी यहां मदद नहीं कर सकते, जिसके ऊपर तुमको भरोसा, जिस पर तुमने पूरी जिंदगी लुटा दी, जिनकी खिदमत में तुमने अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी, ये यहां पर तुम्हारे मददगार नहीं बन सकते और तुम्हें ये लोग निजात नहीं दे सकते हैं। तो यहां पर ये जो लफ्ज है कि वमन यज़लिम मिनकुम नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा, ये बात अहम है कि जो भी तुम में से जुल्म करेगा उसे हम बड़े सख्त अजाब से दोचार करेंगे। वमन यज़लिम, जो भी जुल्म करेगा उसे हम जुल्म का मजा चकाएंगे, नुज़िक़हु उसे जो है हम जुल्म का मजा चकाएंगे, जो भी जुल्म करेगा। तो जुल्म के जालिम जालिम की शिनाख्त और जुल्म के अजबाब ही है कि नाकामी जो है जालिमों के हिस्से में आती है। ला यफलहु जालिमून, जालिम जो है वो नाकाम होने वाले हैं और फलाह और बहबूद उनके हिस्से में आने वाली नहीं है। और जो जालिम होते हैं वो अल्लाह इलाही से हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो जाते हैं। अला लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन, और इनसे कोई उज्र भी कबूल नहीं किया जाएगा। ला यनफ़ुज़्ज़ालिमीन माज़रतुहुम, इनकी माजरत को, जालिमों की माजरत को कबूल नहीं किया जाएगा। इनसे किसी किस्म की कोई उज्र को सुना नहीं जाएगा, इसलिए कि ये फितरत इंसानी के खिलाफ है। अल्लाह सुबहानहु ताला को छोड़कर किसी और को पुकारना इंसान के मिजाज के खिलाफ है, इंसान की फितरत के खिलाफ है। कोई उज्र यहां पर काम आने वाला नहीं है कि लोगों ने मुझे भटकाया था, लोगों ने इसलिए कि जो है कोई भी गुनाह हो सकता है कि गुनाह में कोई भटका सकता है। इसका मामला ऐसा है, इंसान की फितरत चीख चीख के पुकार रही है अल्लाह सुबहानहु ताला की जात को, उसके एक एक हिस्से से अल्लाह सुबहानहु ताला की आवाज आ रही है, उसकी समातें, उसकी बसारतें, है ना, उसका दिलो दिमाग उसके वजूद की गवाही दे रहा है। तो लिहाजा कोई उज्र जालिमों का काबिल कबूल नहीं है। और इस आयात से जो चीज वाज़ह होती है, जो नतीजा निकलता है कि बुध जो है किसी के दोस्त नहीं हो सकते, बल्कि ये खुद तुम्हारी तकजीब करते हैं और तुम्हें खुद, वो खुद दामन झाड़ लें। तुमको जालिम है, इसलिए कि सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है और मुशरिक सबसे बड़ा जालिम है, इसलिए कि वो उसने अल्लाह की जात पर जुल्म किया है। और अपनी फितरत से इन्हराफ किया है। तो नतीजे गुफ्तगू ये है कि अल्लाह सुबहानहु ताला को छोड़कर जिस किसी की भी इंसान इताअत करे, जिस किसी की भी परस्तिश करे, जिस किसी की भी बात माने, मैंने कल अर्ज किया आपके सामने कि अगर कोई किसी की भी बात मानता है, अपने राहिबों की बात मानता है, अपने जो है अपने उलमा की बात मानता है, अपने मुफक्किरीन की बात मानता है, अपने खतीबों की बात मानता है, सब के सब क्या हो जाएंगे? जहन्नमी हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि खुदा को छोड़कर गैर खुदा, चाहे खतीब हो, गैर खुदा चाहे हाकिम हो, गैर खुदा चाहे दोस्त हो, गैर खुदा चाहे दानिश्वर हो, गैर खुदा चाहे जो है आलिम हो, गैर खुदा चाहे राहिब हो, गैर खुदा कोई भी हो, जिस किसी की भी वो इताअत कर रहा है, यानी जिस किसी की भी वो बात मान रहा है, तो ये यहां पर अगर उलमा ताला की बात मनवा रहे हैं आपसे, तो आपको अल्लाह का बंदा बना रहे हैं। रहमान की बात कर रहे हैं तो रहमान का बंदा बना रहे हैं, और अगर शैतान की बात बनवा रहे हैं तो शैतान का बंदा बना रहे हैं। और अगर आप उसकी बात मान रहे हैं तो अगर रहमान की बात मान रहे हैं, इसलिए कि चाहे हवाए नफ्स की खुद अपने खुदा को छोड़कर इंसान खुद अगर अपनी बात भी माने तो भी गुमराह है। हवाए नफ्स की पैरवी हमेशा शुरू कर दी, सभी की समस्या अगर बात मान रहे हैं, सभी की बात मन रहा है, पालर रसूल कह रहा है और वो बात को आप मान रहे हैं, आलम बाह समझ के मान रहे हैं, आलम रसूल समझ के मान रहे हैं,
तो कोई मुजाहरा नहीं।
इस वक्त वो आप वो आलिम की बात नहीं मान रहे हैं, आप तो खुदा की बात मान रहे हैं।
तो खुलासा यही है कि इस वक्त मुसलमानों की अक्सरियत शिर्क में मुब्तला है।
वमा युमिन अक्सरहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून।
कितने ऐसे दावेदारान ईमान हैं जो मुशरिक हैं। आज मक्का और मदीना के रहने वाले जो अपने आप को खादिमैन हरमैन शरीफैन कहते हैं, वो लोग अमरीका की गुलामी कर रहे हैं, इसराइल की गुलामी कर रहे हैं। जो इसराइल कह रहा है वो बात मान रहे हैं। इसराइल के खिलाफ एक फतवा नहीं दिया जाता कि इसराइल जालिम है। कुरान की आयतें ही सुना देते अलामीन अगर कहते थे और ये जालिमीन, क्या इसराइल जालिम नहीं है? क्या किसी को शक है? यानी आज भी किसी को शक है, चाहे हिंदू हो के मुसलमान हो, दुनिया का कोई भी शख्स हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, क्या उसको इस बात पर शक है कि इसराइल हक पर है? इसराइल के जालिम होने पर कोई शक है? पूरा जालिम मजलूम फलस्तीनियों को 60 साल से उन्हें बेघर किया हुआ है, जुल्म कर रहा है। नहत्ते फलस्तीनियों का कत्ल करने वाला क्या जालिम नहीं है? इस खुले हुए जालिम की जो लोग पैरवी कर रहे हैं, अल्लाह को छोड़कर जो इसराइल की परस्तिश कर रहे हैं, इसराइल की बात मान रहे हैं, इसराइल का हुक्म तस्लीम कर रहे हैं, इसराइल कह रहा है शाम पे हमला करो तो शाम पे हमला कर रहे हैं, इसराइल कह रहा है कि मुर्सी को बेदखल कर दो तो ये मुर्सी को बेदखल करने के लिए तैयार है, जो कहे के लिए तैयार है। और उसको मक्के और मदीने में रहकर अल्लाह सुबहानो ताला की जात पर इन्हें यकीन नहीं है, बल्कि इसराइल की ताकत पर यकीन है। अमेरिका के खिलाफ कोई फतवा नहीं दिया जाता, किसी ने यह नहीं कहा कि इसराइल की पैरवी करना गुनाह है। सब मिलकर इसराइल के खिलाफ खड़े हो जाओ, शिया हो या सुन्नी हो, यह नहीं कहा जा रहा है। खिलाफ एक फतवा भी आज तक नहीं दिया गया। मतलब क्या है? अमेरिका को बड़ा समझा जा रहा है। परस्तिश जो की जा रही है वो डॉलर की, परस्तिश जो की जा रही है वो ओबामा की। ओबामा क्या है? वक्त, वक्त का शद्दाद है वक्त। ये लोग कह रहे हैं जिंदगी हम देते हैं, मौत हम देते हैं, खाना हम खिलाते हैं, पानी हम पिलाते हैं, मुल्क तुम्हारे मुल्क पर कंट्रोल हमारा है, तुम कुछ नहीं कर सकते हमारे बगैर। ये फिरौन बने हुए हैं और ये इन फिरौनों के सामने सजदा कर रहे हैं। अमेरिका के हलीफ मुमालिक कौन है, यानी जो अमेरिका को ताकत दे रहे हैं वो कौन है? अगर सारे मुसलमान अमेरिका की परस्तिश करना छोड़ दें, इसराइल के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो इसराइल एक दिन भी नहीं रह सकता। अगर सारे मुसलमान, जैसा कि इमाम खुमैनी कहते थे कि तमाम मुसलमान मिलकर एक बाल्टी पानी इसराइल पर फेंके, तो इसराइल सफ़े हस्ती से नाबूद हो जाएगा, एक घंटे में इसराइल खत्म हो जाएगा। लेकिन यही सऊदी अरबिया, यही कतर, यही अमारातुल अरबिया, यही बहरीन, यही चंद मुमालिक कहते हैं जो अमेरिका का खुल्लम खुल्ला साथ दे रहे हैं। अमेरिका के हलीफ मुमालिक कहे जाते हैं, यानी अमेरिका के दोस्त, अमेरिका के यार वफादार, अमेरिका के शाना बशाना। अब अमरीका जुल्म कर रहा है तो जुल्म में शरीक। इराक पर हमला किया, खुद इन्हीं के भाई को मार दिया, तो ये इसमें शरीक। सद्दाम को हटकर कितना अरसा हो गया, लेकिन इराकियों पर जुल्म खत्म नहीं हुआ है और उस जुल्म में ये शरीक हैं बराबर के। पाकिस्तान पर हो रहा है अमेरिका का, ये लोग साथ हैं इनकी। शाम में अमेरिका और इसराइल मिलकर हमला कर रहे हैं, नहीं कि अपने आप को मुसलमान के कलमा पढ़ने वालों पर हमला कर रहे हैं।
और इन्हीं की मदद ले रहे हैं, इन्हीं के दौलत खर्च हो रही है, इन्हीं का पैसा खर्चा हो रहा है। मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका कि मुसलमानों को दहशतगर्द बताया जा रहा है और मुसलमान जो दहशतगर्द बने हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ, इतने बड़े दयालु नहीं पहुंचाए, ये इतने बड़े दहशतगर्द हैं कि जो अपने ही मुल्क में आग लगाते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द हैं, अफगानिस्तान को तबाह कर दिया। क्या अफगानिस्तान सबसे अमीर मुल्क है दुनिया का, सबसे मुरफ्फहाल मुल्क है? अफगानिस्तान के दहशतगर्द खुद अफगानिस्तान को तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान के दहशतगर्द खुद पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, इराक के दहशतगर्द खुद इराक को तबाह कर रहे हैं, शाम के दहशतगर्द खुद शाम को तबाह कर रहे हैं। अफगानिस्तान के दहशतगर्द, अफगानिस्तान बहुत ही बड़ा अजीम ताकतवर मुल्क है, यह दुनिया का सबसे कमजोर मुल्क है, जबकि वहीं के दहशतगर्द पूरी दुनिया में मशहूर है ना। तो ये दहशत फैलाकर अपने मुल्क को फायदा पहुंचा रहे हैं या अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं? पाकिस्तान के तालिबान मशहूर हैं या नहीं है? लेकिन क्या पाकिस्तान के तालिबान हिंदुस्तान को लूटकर पाकिस्तान को अमीर कर रहे हैं या खुद पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं? के दहशतगर्द इराक को तबाह कर रहे हैं, शाम के दहशतगर्द किसको तबाह, किस मुल्क को तबाह कर रहे हैं? ये दहशतगर्द जो है शाम के, ये किस मुल्क को आग लगा रहे हैं? अपने ही मुल्क को आग लगा रहे हैं। किसने कहा इनसे? यार इनके पास कहां से आ रहा है इन दहशतगर्दों के पास? अगर आप कह रहे हैं कि दहशतगर्द उस मुल्क के बाशिंदे हैं और उनको हक पहुंचता है, तो क्या बहरीन की आवाम को हक नहीं पहुंचता है? यमन की आवाम को हक नहीं पहुंचता? मिस्र की आवाम को हक नहीं है खुद फैसला करें? लेकिन मिस्र की आवाम के फैसले को अमरीका नहीं मानता है। फिलिस्तीन में हमास जीत कर आई या नहीं आई? लेकिन क्यों हमास को क्यों नहीं माना जाता? क्यों आज भी फतह को माना जाता है? अमेरिका फतह को मानता है तो सऊदी भी फतह ही को मानता है। पूरी अरब दुनिया का पैसा किसको मिलता है? फतह को मिलता है, हमास को नहीं मिलता है, जबकि हमास जीत कर आई है। क्या इतना भी मुसलमान नहीं समझता कि अमेरिका की मर्जी के खिलाफ मुसलमान जा ही नहीं सकता है? इसका मतलब यह है कि मुसलमान अल्लाह की बात नहीं कर रहा है। सबसे बड़े मुशरिक सऊदी अरब, सबसे बड़े मुशरिक दुनिया के, अल्लाह सुभानहु तआला को छोड़कर गैर खुदा की परस्तिश कर रहे हैं। क्या ओबामा गैर खुदा नहीं है? उस फिर उसकी इताअत क्यों कर रहे हैं? उसकी इबादत क्यों कर रहे हैं? उसकी बात क्यों मान रहे हैं? जरूरी नहीं है कि जिसको भी आप माने उसको खालिक कायनात ही समझ के माने, नहीं। अगर आप उसकी इताअत भी कर रहे हैं, उसके हुक्म अगर आप मान रहे हैं दुनिया में, तो गोया आप उसकी इबादत कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप ओबामा को खालिक अर्ज़ो समा माने तो ही आप मुशरिक हुए, वरना आप मुशरिक नहीं है। नहीं, अगर आप अल्लाह के अलावा खुदावंद सुभान की इताअत छोड़कर अगर आप ओबामा के हुक्म को मान रहे हैं, वो जो कह रहा है वो सुन रहे हैं, तो गोया आप गैर खुदा की इबादत कर रहे हैं, गैर खुदा की इताअत करना जुर्म है, शिर्क है। इबादत अल्लाह सुभान व तआला के अलावा किसी की इबादत न की जाए, या का नाम समझते हम तेरी ही नाबुदू का नहीं, तेरी भी इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। नस्तईनु का नहीं, तुझसे मदद मांगते हैं, नहीं, तुझसे ही मदद मांगते हैं और तेरे अलावा किसी से भी मदद नहीं मांगते। अल्लाह के अलावा गैर खुदा से मदद मांगना शिर्क है, गैर खुदा की इबादत करना शिर्क है। अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने कहा है कि इनकी बात मानना मेरी बात मानना है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया और रसूल फकत, जिसने भी रसूल की इताअत की, जिसने मेरी इताअत की, जिसने भी साहिबान अमर की इताअत की, रसूल अकरम कहते हैं जिसने अली की बात मानी, है ना। लेकिन ये लोग तो वही कहते हैं जो अल्लाह सुभान व तआला कहता है, ये अल्लाह के मुकाबले में नहीं कहते। लेकिन वो लोग जो अल्लाह के मुकाबले में कहते हैं, वो तो यकीनन गैरुल्लाह है और उनकी इताअत करना शिर्क है, ओबामा की बात मानना शिर्क है, फिरौन की बात फिरौन की परस्तिश करना है। ये लोग फिरौन है वक्त के, किसी को शक है इनके फिरौन होने में शक है। ये लोग अना रब्बुकुमुल आला का दावा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हम सबसे बड़े परवरदिगार हम हैं तुम्हारे, हम तुम्हें रिस्क देते हैं, हम तुम्हें जिंदगी, तुम जो बादशाह बने बैठे हो वो हमारी वजह से है। अगर हम चाहें बर्खास्त कर दें, और पूरी सऊदी अरब में कंट्रोल अमरीका का है, अगर अमरीका आज चाहे तो चंद घंटों में नहीं बल्कि सानियों में जो है हुकूमत को बर्खास्त करके अपने किसी के हाथ में कंट्रोल है इस वक्त, इसलिए वो कुछ भी ये लोग, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा बागडोर उसके हाथ में दे दिया, अपनी पूरी जिंदगी पूरी पूंजी पूरी चाबियां इनके हवाले कर। तो लिहाजा मुसलमानों को आना बेदार होने की जरूरत है, कुरान की आयतें हमें झिंझोड़ लेंगी, तुम गैर खुदा को अगर उन पर अगर भरोसा करोगे, उन पर तवक्कुल करोगे, उन अल्लाह को छोड़कर अगर इनकी ताकतों पर भरोसा करोगे तो रुस्वा हो जाओगे। कितनी मरतबा रुस्वा देखकर अगर आप में रुस्वा हुए या वो रुस्वा हुआ, उसने मुबारक साथ दिया वो रुस्वा हुआ, सद्दाम ने पैरवी की सद्दाम रुस्वा हुआ, अब ये लोग शाह अब्दुल्ला ये लोग अभी इंतजार में बैठे रहे कि इनकी रुस्वाई के दिन कब आते हैं, कि जिस किसी ने भी इनकी पैरवी की इन खुदाओं ने उनको अपने ही मानने वालों को इन्होंने जो है ना जलील और रुस्वा किया। शाह ईरान को बुला के इलाज नहीं कर पाया, उसको जो है पनाह, उसने मुबारक को आज तक पनाह नहीं, वो मिस्र ही में तड़प तड़प के सिस्कियां लेके मर रहा है। सद्दाम हुसैन को इन्होंने पनाह नहीं दी, बल्कि उसी के मुल्क में उसको फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया। मानने वाले अपने बंदों के साथ ऐसे ही सुलूक करते हैं, ये ऐसे खुदा हैं। तो लिहाजा मुसलमानों की बेदारी के लिए हमको दुआ करना चाहिए कि परवरदिगार मुसलमानों में शऊर पैदा हो, मुसलमानों में हौसला पैदा हो, मुसलमानों में सोचने समझने की सलाहियत पैदा हो, और वो गैर खुदा से जो है अपना मुंह मोड़ लें, खुदाए वाहिद की परस्तिश करें, खुदाए सुबहान की परस्तिश करें, अल्लाह सुबहान व तआला के सामने सर्वसजूद हो जाएं और उसी के ज़ात पे तवक्कुल करें, कुरान मजीद को वाहिद दस्तूर के तौर पर तस्लीम कर लें, और परवरदिगार मुसलमान ममालिक को मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए, इसलिए कि ये वो हैं कि जिन मुसलमान ममालिक में कुरान का हुक्म नहीं चलता है, कुवैत हुक्म नहीं चलता है, पाकिस्तान में कुरान का हुक्म नहीं चलता है, बल्कि वहाँ की ख्वातीन बेपर्दा घूमती हैं, वहाँ वहाँ सब के सब कुरान के खिलाफ अमल करते हैं। तो परवरदिगार कुरान मजीद पर अमल करने की तौफीक अता फरमा मुसलमानों को, कुरान मजीद को समझने की तौफीक अता फरमा, तिलावत कुरान की तौफीक अता फरमा, इस महीने की रहमतों और बरकतों से महरूम न फरमा, माह मुबारक रमज़ान की मगफरत से महरूम न फरमा, हमारे अमवात को बख्श दे, जो बीमार हैं उन्हें सेहतियाब फरमा, और परवरदिगार जिन मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इराक के मुसलमान, शाम के मुसलमान, लिबनान के मुसलमान, इन सब को जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक की तौफीक अता फरमा, परवरदिगार ज़ालिमों को नीस्त व नाबूद फरमा, बिलखुसूस अमरीका और इसराइल को जलील व ख़ार फरमा, इमाम असर जल्लल्लाहु तआला शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा, हम्द की तिलावत फरमा कर हाज़िरीन के मरहूमीन तमाम अरवाह मुस्लिमीन अरवाह मोमिनीन को शामिल। بسم الله الرحمن الرحيم।